नमस्कार, आज हम एक बड़ी दिलचस्प गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ है सोशल वर्क, एक ऐसा पेशा जो पूरी तरह से मानवीय संवेदनाओं, भरोसे और आप कह सकते हैं आपसी जुड़ाव पर टिका है, और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI, जो डेटा पैटर्न और तर्क पर चलता है। तो सवाल ये है कि जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं तो होता क्या है?
बिल्कुल, और ये सवाल आज बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारी आज की बातचीत का आधार है एक बहुत ही गहरी ई बुक जिसका नाम है AI एंड द फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मशीनें वाकई उस काम में हाथ बटा सकती हैं जहां दिल और संवेदनाओं की ज़रूरत होती है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि इस बदलाव के असल मायने क्या हैं।
तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी सोशल वर्कर्स की मदद कैसे कर रही है, लेकिन साथ ही उन मुश्किल नैतिक सवालों को भी कुरेदेंगे जो इसके साथ आते हैं। क्या हम एक बेहतर भविष्य बना रहे हैं या अनजाने में कोई नई समस्या खड़ी कर रहे हैं? जब हम सोशल वर्क के बारे में सोचते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों के मन में क्या आता है? वही फाइलों के ढेर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर और आमने सामने बैठकर की जाने वाली काउंसलिंग। और ये काफी हद तक सही भी था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। ये क्षेत्र अब एक बड़ी डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। वो कागज की फाइलें अब धीरे धीरे स्मार्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम में बदल रही हैं।
और इसका सबसे पहला और सीधा असर सेवाओं की पहुंच पर पड़ा है। सोचिए, टेली काउंसलिंग या ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनके जरिए अब उन लोगों तक भी मदद पहुंच रही है जो शायद दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या किसी शारीरिक अक्षमता की वजह से दफ्तरों तक नहीं आ सकते थे। ये एक बहुत बड़ा कदम है।
ये बात तो ठीक है कि पहुंच बढ़ रही है और काम भी ज्यादा कुशल हुआ है। जैसे कि हमारे स्रोत बताते हैं, चैटबॉट जैसे टूल वो अब उन शुरुआती सवालों के जवाब दे रहे हैं जिनके लिए पहले घंटों इंतजार करना पड़ता था। इससे सोशल वर्कर्स का समय बच रहा है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या हम यहाँ कुशलता के लिए सहानुभूति का सौदा कर रहे हैं? हो सकता है कोई व्यक्ति सच में किसी इंसान से बात करना चाहता हो और उसे मशीन से जवाब मिल रहे हों।
ये एक बहुत वाजिब चिंता है, और यहीं पर टेक्नोलॉजी की भूमिका को सही ढंग से समझना जरूरी हो जाता है। हमारी श्रोत ईबुक एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताती है, ऑटोमेशन और ऑगमेंटेशन के बीच का फर्क। टेक्नोलॉजी का मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है।
ऑटोमेशन और ऑगमेंटेशन, ये दोनों शब्द बहुत इस्तेमाल होते हैं। मुझे लगता है कि सोशल वर्क के संदर्भ में इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक का मतलब है इंसान को प्रक्रिया से हटाना और दूसरे का मतलब है इंसान को और ज्यादा ताकतवर बनाना। क्या मैं सही समझ रही हूँ?
बिल्कुल सही समझ रही हैं। ऑटोमेशन का मतलब है दोहराए जाने वाले रोजमर्रा के कामों को मशीन पर डाल देना, जैसे रिपोर्ट बनाना, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना या डेटा एंट्री करना। ये वो काम हैं जो सोशल वर्कर का बहुत समय लेते हैं, लेकिन उनमें मानवीय सूझबूझ की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी ओर ऑगमेंटेशन का मतलब है सोशल वर्कर की निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए AI से मदद लेना। AI डेटा का विश्लेषण करके कुछ सुझाव दे सकता है, पैटर्न दिखा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला वो हमेशा उस पेशेवर का ही होगा जो इंसान की स्थिति को समग्रता में समझता है। लक्ष्य यही है कि सोशल वर्कर्स का कीमती समय कागजी कार्यवाही से हटाकर उन लोगों के साथ बिताया जाए जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
ठीक है, ये फर्क अब साफ है। तो अब बात करते हैं कि AI असल में सोशल वर्क में कर क्या रहा है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे प्रभावशाली उपयोग है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, मतलब भविष्य का पूर्वानुमान लगाना। ये सुनने में ही बहुत बड़ा दावा लगता है।
हाँ, और ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन ये अब हकीकत बन रहा है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब है कि AI सिस्टम वो मौजूदा और ऐतिहासिक डेटा के विशाल भंडार का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाली घटनाओं की संभावना का अनुमान लगाता है। यह उन पैटर्न्स को पहचानता है जिन्हें इंसान शायद कभी देख ही न पाए।
हमारी श्रोत ईबुक में इसका एक बहुत ही मजबूत और गंभीर उदाहरण दिया गया है कि AI सिस्टम विभिन्न स्रोतों से मिले डेटा का विश्लेषण करके ये अनुमान लगा सकता है कि किस बच्चे के साथ भविष्य में दुर्व्यवहार या उपेक्षा का खतरा ज्यादा है, या कौन सा परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच रहा है, और ये सब संकट के असल में घटने से पहले हो सकता है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है।
बिल्कुल, और ये काम कैसे करता है ये समझना भी दिलचस्प है। AI सिर्फ एक चीज को नहीं देखता, वो क्लाइंट के पिछले रिकॉर्ड, स्वास्थ्य से जुड़े डेटा, स्कूल में बच्चे की उपस्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, यहां तक कि उस समुदाय में चल रहे रुझानों जैसे दर्जनों स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता है। इन सबको मिलाकर वो एक रिस्क स्कोर तैयार करता है। इससे सोशल्स वर्क सिर्फ किसी की आंतरिक भावना या अनुभव पर आधारित नहीं रहता, बल्कि सबूतों और तथ्यों पर आधारित हो जाता है। इसी को हम डेटा ड्रिवन निर्णय कहते हैं।
और इसके अलावा केस मैनेजमेंट में भी इसका बड़ा रोल है। AI उन हजारों मामलों में से उन कुछ मामलों को तुरंत उजागर कर सकता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, या फिर हर व्यक्ति की जरूरतों को समझकर एक व्यक्तिगत देखभाल योजना, मतलब एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान बनाने में मदद कर सकता है।
एक और तकनीक है जिसका जिक्र करना यहां जरूरी है, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP। जरा सोचिए, एक सोशल वर्कर दिन भर में कितने नोट्स लिखता है, कितनी रिपोर्ट तैयार करता है। NLP टूल उस लिखे हुए टेक्स्ट का विश्लेषण करके छिपे हुए पैटर्न या कह सकते हैं भावनाओं को पहचान सकते हैं। हो सकता है किसी की बातों में निराशा बढ़ रही हो या कोई छुपा हुआ खतरा हो जो शायद सरसरी तौर पर पढ़ने में नजर ना आए। NLP इन संकेतों को पकड़ सकता है।
ये भविष्य की तस्वीर तो बहुत असरदार लगती है कि हम संकट आने से पहले ही उसे पहचान लें। लेकिन मेरा दिमाग फौरन उन चीजों की तरफ जाता है जो गलत हो सकती हैं। अगर AI का अनुमान ही गलत हुआ तो, अगर वो किसी परिवार को गलत तरीके से उच्च जोखिम वाला बता दे तो क्या होगा? यहीं से शायद नैतिक सवाल उठने शुरू होते हैं।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। टेक्नोलॉजी जितनी शक्तिशाली होती है, उसके साथ आने वाले नैतिक जोखिम भी उतने ही बड़े होते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे गंभीर चुनौती है एल्गोरिथमिक बायस, मतलब एल्गोरिथम का पक्षपात।
इसे थोड़ा और आसानी से समझाइए, इसका असल में मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि AI भी इंसानों की तरह भेदभाव कर सकता है। AI खुद से कुछ नहीं सीखता, हम उसे डेटा से सिखाते हैं। अगर वो डेटा जिस पर AI को ट्रेन किया गया है पहले से ही समाज में मौजूद भेदभाव को दिखाता है, जैसे कि जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर ऐतिहासिक रूप से कुछ समूहों के साथ ज्यादा सख्ती हुई हो, तो AI भी उसी भेदभाव को सीख लेगा। और वो उस भेदभाव को ना सिर्फ दोहराएगा बल्कि उसे और मजबूत कर देगा, क्योंकि अब वो वैज्ञानिक और डेटा आधारित लगेगा।
ये तो बहुत खतरनाक बात है। मतलब टेक्नोलॉजी एक मौजूदा पूर्वाग्रह को वैज्ञानिक तथ्य बनाकर पेश कर सकती है। क्या इसका कोई उदाहरण है?
बिल्कुल। मान लीजिए किसी शहर का पुराना डेटा दिखाता है कि एक खास पिछड़े इलाके से ज्यादा लोगों को सरकारी मदद के लिए अयोग्य ठहराया गया है, शायद किसी पुराने नियम या इंसानी पूर्वाग्रह की वजह से। अब अगर इसी डेटा पर AI को ट्रेन किया गया तो AI ये सीख लेगा कि उस इलाके से आने वाले आवेदन ज्यादा जोखिम वाले होते हैं और उन्हें खारिज करने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह मदद देने की बजाय सिस्टम उन लोगों के साथ और अन्याय करने लगेगा जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
और ये तो सिर्फ एक पहलू है, मुझे लगता है डेटा की गोपनीयता का भी एक बड़ा मुद्दा होगा। सोशल वर्क में लोगों की बहुत ही निजी और संवेदनशील जानकारी होती है।
निश्चित रूप से, ये दूसरा बड़ा नैतिक पहलू है। क्लाइंट का स्वास्थ्य रिकॉर्ड, उनकी पारिवारिक समस्याएं, उनकी आर्थिक स्थिति, ये सब जानकारी अब डिजिटल सिस्टम में है। अगर इस सिस्टम को हैक कर लिया जाए या डेटा लीक हो जाए तो लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। उस जानकारी का गलत इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने या उनके खिलाफ भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है।
और एक मानवीय पहलू भी है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। क्या तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भर होने से सोशल वर्कर और क्लाइंट के बीच का वो मानवीय और भावनात्मक रिश्ता खत्म होने का खतरा नहीं है? वो भरोसा कैसे बनेगा अगर हर बातचीत सिर्फ डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए हो रही हो?
ये तीसरा और शायद सबसे सूक्ष्म खतरा है। एक इंसान जो संकट में है उसे सिर्फ समाधान नहीं चाहिए होता, उसे सहानुभूति, दिलासा और विश्वास भी चाहिए होता है। उसे ये महसूस करना होता है कि कोई सच में उसकी परवाह करता है। अगर बातचीत सिर्फ लेनदेन वाली होकर रह जाए तो सोशल वर्क का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है, डिजिटल डिवाइड का। अगर सारी सेवाएं ऐप और वेबसाइट पर चली गईं तो उस बुजुर्ग व्यक्ति का क्या होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, या उस परिवार का क्या होगा जो दूर किसी गांव में रहता है जहां इंटरनेट नहीं है? इससे समाज में असमानता कम होने की बजाय और बढ़ सकती है।
तो फिर रास्ता क्या है? इतनी सारी नैतिक चुनौतियां सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि शायद हमें इस टेक्नोलॉजी से दूर ही रहना चाहिए।
दूर रहना शायद समाधान नहीं है, क्योंकि इसके फायदे भी बहुत बड़े हैं। स्रोत के अनुसार समाधान एक शब्द में है, ह्यूमन ओवरसाइट। मतलब मानवीय निगरानी। हमें यह सिद्धांत बनाना होगा कि एआई हमेशा एक सहायक उपकरण रहेगा, एक सलाहकार की तरह। वो सुझाव दे सकता है, विश्लेषण कर सकता है, खतरे बता सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय वो हमेशा एक प्रशिक्षित अनुभवी इंसान का ही होना चाहिए। मशीन का काम इंसान की बुद्धि को और तेज करना है, उसकी जगह लेना नहीं।
ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। अगर एआई रिपोर्ट बनाने, केस को प्राथमिकता देने और खतरे का अनुमान लगाने जैसे काम करने लगेगा, तो क्या इससे सोशल वर्कर्स की अहमियत कम नहीं हो जाएगी? उनकी भूमिका क्या बचेगी?
ये बहुत वाजिब सवाल है और बहुत से पेशेवर ये डर महसूस करते हैं, लेकिन इसका जवाब है कि उनकी भूमिका कम नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा मानवीय और ज्यादा जरूरी हो जाएगी। हम एक हाइब्रिड प्रोफेशनल के दौर में जा रहे हैं। सोशल वर्कर की भूमिका का अंत नहीं हो रहा, बल्कि उसका विकास हो रहा है।
हाइब्रिड प्रोफेशनल, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के किरदार जैसा लगता है। मतलब एक ऐसा सोशल वर्कर जो एक तरफ किसी परेशान परिवार को हिम्मत बंधा सकता है, उनके साथ बैठकर उनकी कहानी सुन सकता है, और दूसरी तरफ एआई सिस्टम से मिले डेटा को पढ़कर ये बता सकता है कि सिस्टम का सुझाव पक्षपाती है या नहीं। ये तो स्किल्स का एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन है।
आपने एकदम सही समझा। भविष्य के सोशल वर्कर को दोहरी भाषा बोलनी होगी, एक तरफ सहानुभूति और संवाद की भाषा और दूसरी तरफ डेटा और टेक्नोलॉजी की भाषा। उन्हें पारंपरिक मानवीय कौशल के साथ साथ तकनीकी साक्षरता भी रखनी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि एआई से मिले सुझावों का मूल्यांकन कैसे करें, उनकी सीमाओं को कैसे पहचानें और उन्हें नैतिक रूप से कैसे इस्तेमाल करें।
तो भविष्य में किस तरह के नए कौशल की जरूरत पड़ेगी इस पेशे में?
स्रोत के मुताबिक कुछ कौशल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। पहला, डेटा लिटरेसी, मतलब डेटा को पढ़ने और समझने की क्षमता। दूसरा, डिजिटल दुनिया में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता। और तीसरा, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और डेटा साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करने की काबिलियत, ताकि वो ऐसे टूल बना सकें जो जमीनी हकीकत से जुड़े हों। लक्ष्य एक मानव केंद्रित एआई भविष्य बनाना है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानी संवेदना और करुणा को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हो।
तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार यही निकलता है कि सोशल वर्क में एआई एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये पूर्वानुमान लगाकर और काम को कुशल बनाकर इस क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, जिससे लाखों लोगों को समय पर और बेहतर मदद मिल सकती है,
और दूसरी तरफ एल्गोरिथमिक पक्षपात, डेटा की गोपनीयता और सबसे जरूरी मानवीय जुड़ाव के खत्म होने जैसे गंभीर नैतिक जोखिम भी हैं। इन पर लगातार नजर रखना और इन्हें नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मदद करने के चक्कर में नुकसान कर बैठेंगे।
तो आगे का रास्ता क्या है? टेक्नोलॉजी और इंसानियत में से किसे चुने?
रास्ता किसी एक को चुनने का है ही नहीं, रास्ता दोनों को जिम्मेदारी से साथ लेकर चलने का है। इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन, शिक्षण संस्थानों और सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। उन्हें मिलकर ऐसे नियम और कानून, मतलब एक मजबूत गवर्नेंस ढांचा बनाना होगा, जो ये सुनिश्चित करे कि टेक्नोलॉजी हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए ही काम करे, न कि उस पर हावी हो जाए।
ये वाकई एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना बहुत मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी है, और ये हमें एक बहुत दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
बिल्कुल।
जैसे जैसे एआई हमारे जीवन में विश्लेषण, प्रशासन और पूर्वानुमान जैसे काम संभालता जा रहा है, खासकर सोशल वर्क जैसे क्षेत्रों में, ये हमें खुद से एक फंडामेंटल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हम सहानुभूति, करुणा और विश्वास बनाने जैसे विशुद्ध मानवीय कौशलों को कितना महत्व देते हैं? क्या हम इन गुणों को और अधिक महत्व देना सीखेंगे क्योंकि मशीनें ये नहीं कर सकती? या फिर हम इन्हें भी किसी न किसी दिन आंकड़ों में बांधकर स्वचालित करने की कोशिश करेंगे? हमारा जवाब ही तय करेगा कि भविष्य में इंसान और मशीन का रिश्ता कैसा होगा।